कैलाश के निवासी नमः बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमः बार बार हो आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तुम। भक्तों को कभी तुमने शिष्य निराश न किया जो जहा जिसने वो वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तुमने शिष्य निराश न किया जो जहा जिसने वो वरदान दे दिया। वो वरदान दे दिया वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं आँखों की ठेर का चपटी भभूत में ही खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं आँखों की ठेर का चपटी भभूत में ही खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। है गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु तेरी दया से श्वास लेते हैं तनु तनु। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु तेरी दया से श्वास लेते हैं तनु तनु। कहे दा एक बार मुझको निहार तू। कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमः बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौन किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, आकर के इस झूठे जग में भूल गया मैं नाम तेरा। ऋषि मुनि फिर आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। जगमग जगमग हो रहा, जग जग दिए में तेल और बाती, जगमग जगमग हो रहा, जल आते निपट गई बाती तो ले चल ले चल हो रहा, जल आते निपट गई बाती ले चल ले चल हो रहा। चार जने फिर आते हैं, चार जने फिर आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के। केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए।
परम पूज्य परमादरणीय निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय मंचस्थ महामंडलेश्वर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम
ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ नमः ॐ नमो बाबाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। आशुतोष भगवान शिव जी के असीम अनुकंपा से पुनः इस वर्ष भी भगवान शिव के भक्ति से ओतप्रोत आदि गुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग आज से आरंभ होने जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित संत प्रवचन माला के अंतर्गत का कार्यक्रम है। पिछली बार भी इसको शुरू किया था, पिछली बार 22 श्लोक तक की व्याख्या हुई थी। इस शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र में, भक्ति स्तोत्र में 100 श्लोक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की रचना है ये। कुछ लोग शंकराचार्य भगवान को शुष्क वेदांती कहकर आलोचना करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज के हृदय को जो नस नहीं समझते हैं तो केवल भाषा में सन्निहित होते हैं और वेदांत के प्रक्रिया और प्रकरण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये शुष्क वेदांत, इनके पास भाव का भक्ति का हृदय नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी जितने शुष्क वेदांती हैं उनके शुष्क वेदांतता को हम जब उपदेश सहस्त्री नामक ग्रंथ पढ़ते हैं, 10 श्लोकी पढ़ते हैं, प्रकरण ग्रंथ, तब ये लगता है कि ठीक ही कहते हैं आलोचक लोग कि वो शुष्क वेदांती है, उनके पास भाव और भक्ति का हृदय नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन जब वह भक्ति के हृदय से जब बोलने लगते हैं तो ऐसा वेदांति व्यक्ति भी इस तरह की स्तुति भगवान के भक्ति में ओतप्रोत हो सकता है ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने भाव से भगवत भक्ति करने का आदिगुरु शंकराचार्य जी में जो भाव है, जो हृदय है, शायद ही किसी और के पास हो, यह अतिशुक्ति नहीं है। दूसरी बात कि भगवान शंकराचार्य जी इतने समन्वयात्मक आचार्य हैं, मेरी दृष्टि में वल्लभाचार्यों ने भगवान शिव की स्तुति की हो ऐसा कोई स्तोत्र ग्रंथ नहीं मिलता, मेरे दृष्टि में तो देखा नहीं है आज तक। प्रसंग में भगवान शिव को शिव परमात्मा मानते ही नहीं, वो तो भगवान का भक्त परम भक्त मानते हैं। मुझे लगता है निम्बार्कियों ने भी नहीं किया है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी जहां जब स्तोत्र की रचना करते हैं, भक्ति का अपने हृदय का भाव व्यक्त करने लगते हैं, तो केवल शिवजी के प्रति वो भाव व्यक्त करते हो ऐसा नहीं, भगवान विष्णु के प्रति भी उनका वही भाव है। और आज भी आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के भगवान विष्णु के प्रति अपने भाव जो व्यक्त किया है, षटपदी वैष्णवों में बहुत आदरणीय है। सायंकालीन स्तुति में प्रार्थना में षटपदी के गाए बिना उनके प्रार्थना पूरी होती नहीं है वैष्णवों में, विशेष करके वल्लभ संप्रदाय को कितने सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। अभिनय मपनय विष्णु दमय मन समय विषय मृग तृष्णा भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरता। मान लो उस समय उनका वेदांत काम ही नहीं कर रहा है, जो ये कह रहा हो ऋतिक ज्ञानान न मुक्तये, ये भवसागर से पार होने के लिए ज्ञान के बिना और कोई उपाय नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अनाया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई साधन नहीं। इस तरह ज्ञान के पक्षपाती आचार्य शंकर ये कहते हैं भगवान विष्णु से कि भगवान इस भवसागर से आप ही पार उतार सकते हैं हमको, तारय संसार सागर था, आपकी कृपा नहीं होगी तो हम संसार में डूबे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु के प्रति उसी प्रकार का भाव है। अब भगवान शिव के प्रति जो भाव है वो तो आप इस शिवानंद लहरी के स्तोत्र के व्याख्या के माध्यम से सुनेंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकराचार्य जी भगवान कृष्ण की स्तुति में कृष्णाष्टकम की रचना करते हैं, क्या सुंदर भाव है उसमें। और जब भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा उनकी स्तुति में लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने जबरदस्त साप्त हैं शंकराचार्य जी, ऐसा लगता है कि जबरदस्त वैष्णव हैं, जबरदस्त साक्त हैं, जबरदस्त शैव हैं। और शंकराचार्य जी न साक्त हैं, न शैव हैं, न वैष्णव हैं। शंकराचार्य जी तो ये कहते हैं कि जब आत्मषटक स्तोत्र जब हम गाते हैं, चिंतन करते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, क्या साक्त होगा वो, नमे मृत्यु शंका नमे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता च जन्म। देख लो क्या सुंदर भाव है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वम न मुक्तिर न बंध। क्या भाव है, वहां इस स्तोत्र में शंकराचार्य जी की असलियत प्रकट होता है, असली में तो वही है। और जब सौंदर्य लहरी की रचना करते हैं और सौंदर्य लहरी पलटते हैं हम, क्या सुंदर भाव है। मानो कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के सामने जैसे कहता हो उसी तरह कह रहे हैं। शिवा सत्यायुक्तो यदि भवति सक्त प्रभवितुम न चे देवम देवो न खलु कुशल स्पंदितुम अभी। अतस्त्वाम आराध्य हरिहर विरंज्यादिविरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथमकृत पुण्य प्रभवति। हे जगत जननी जगदम्बा, आपकी महिमा, आपका महत्व, आपका स्वरूप अपरंपार है। शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति, शिव विष्णु ब्रह्मा आदि जितने भी ईश्वर हैं, देवता हैं, ईश्वर कोटि के हैं, वो अपने संकल्प से सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। बिना उपादान कारण, बिना निमित्त कारण के, केवल संकल्प मात्र से वह ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी और शिव भी सृष्टि स्थिति प्रलय ये त्रिकर्म करने में समर्थ हैं। हालांकि ईश्वर के पंचकर्म हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय अनुग्रह तिरोधान, ईश्वर के पंचकर्म हैं। ये पांच कर्म हैं परमात्मा के, सगुण निराकार के। लेकिन ये पांच कर्म भी वे तभी कर सकते हैं जब हे जगत जननी मां तुम्हारे से युक्त होते हैं, तभी ये पंचकर्म करने में समर्थ होते हैं। यदि तुम्हारी कृपा तुमसे युक्त न हो, वियुक्त हो, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शिवा शक्तिया युक्तो यदि भवती सत्ता प्रभवितों नोचेद न खलु कुशल स्पंदितुम अभी। भगवान शिव एक पत्ता भी नहीं ला सकेंगे, देवी की कृपा न हो, भगवती की कृपा न हो, जगत जननी की कृपा न हो, भगवान शिव एक पत्ता भी नहीं ला सकते, विष्णु एक पत्ता भी नहीं ला सकते, ब्रह्मा जी एक पत्ता भी नहीं ला सकते। सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोधान अनुग्रह की तो बात ही छोड़ दो है? उनकी कृपा न हो तो शिव जी अपने आंख के पलकों को भी नहीं उठा सकते, नहीं गिरा सकते, वो तो जड़ बने रहेंगे, चैतन्य होंगे लेकिन निष्क्रिय हो जाएंगे। चैतन्य रहेंगे तरफ लेकिन निष्क्रिय होंगे, निष्क्रिय। आंख की पलकें गिराना और बंद करना भी क्रिया है, वो भी तभी संभव होगा शिवजी के द्वारा जब शक्ति से युक्त होंगे तब। हरिहर विरंजादिविरवि अतस्तम आराध्य, यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी लोग तम आराध्य नित्य निरंतर अप्रमत्त भाव से हे भगवती आपकी आराधना करते हैं। कथमकृत पुण्य, कोई भाग्यशाली है आपकी आराधना आपके कृपा का पात्र बन सकता है, इसीलिए मैं भी आपकी आराधना करने में प्रवृत्त हुआ हूं। अरे भाई, भगवान शिव को, विष्णु को, रुद्र ब्रह्मा को, इन लोगों को तो सृष्टि स्थिति प्रलय अनुग्रह तिरोधान तीन कर्म पंचकर्म करना है, इसलिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शक्ति की आराधना करते रहते हैं। तुम्हें क्या करना है? शंकराचार्य जी जवाब देते हैं, अनादिकालीन हृदय में ग्रंथि के रूप में पड़ा हुआ जो अविद्या की ग्रंथि है उसको नाश करना है मुझे, और वो भी तुम्हारी कृपा के बिना संभव नहीं होगा। इसीलिए शक्ति को शंकराचार्य जी ने पराविद्या का रूप दिया है, पराविद्या। तो पराविद्या यानी शक्ति, ब्रह्म विद्या यानी शक्ति। लौकिक और शास्त्रीय कर्म करने में तो शक्ति की आवश्यकता ही है, मोक्ष के लिए भी अविद्या निवृत्ति के लिए उस परम शक्ति की आवश्यकता है जो ज्ञान स्वरूपिणी है। तो इस तरह भगवती की भी आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, विष्णु की आराधना कर रहे हैं और शिव की आराधना कर रहे हैं। ऐसे समन्वयवादी भक्त तो शंकराचार्य जी ही मिलते हैं। तो उनकी रचना है ये शिवानंद लहरी। भगवान शिव से शंकराचार्य जी किस तरह संवाद करते हैं, भगवान शंकर के प्रति, शिव के प्रति भगवान शंकराचार्य जी का क्या भाव है, साधारण एक लौकिक जीवों के हृदय में बैठकर मानो शंकराचार्य जी संवाद कर रहे हैं, उस समय ऐसा लगता है कि ये ज्ञानी है ही नहीं। ज्ञानी है ही नहीं है, ने अज्ञानियों के जीवों के भाषा का अनुवाद कर रहे हैं। तो ज्ञानी वही है एक अज्ञानी के हृदय में बैठकर अज्ञानी के भाव को भी समझ सके। तो वही तो ज्ञानी है। पिछले साल अंतिम श्लोक 22वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने अपनी मन स्थिति का वर्णन किया है। इस श्लोक में जाकर 22वें श्लोक में हमने पिछले साल पूरा किया था। 22वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने अपने मन की अवस्था को इस तरह वर्णन किया है और भगवान शिव को उस नाम से संबोधन किया जो वेद ने संबोधन किया। तस्कराणाम पतये नमः। भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं वही तस्काराणाम पतये है, गोपांगनानां च दुगूल चौरम है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तस्कर शब्द का अर्थ होता है चोर। कृष्ण तस्कर है, चोर है। क्या क्या चोरी किया? ब्रजांगनानां च दुकूल चौरम, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए वो तस्कराणाम पतये नमः। साधारण चोर तो दूसरे के घर की चोरी करते हैं और चोरों के जो सरदार होते हैं वो अपने घर की चोरी करते हैं, तभी तो वो सरदार हो सकता है। अपने घर की चोरी कर न सके ये चोर किस काम का चोर, अपने घर की भी चोरी करे। कृष्ण लीला में आप लोगों ने तो सुना ही है अपने घर की चोरी की है कि नहीं। मक्खन क्या दूसरे के घर की ही चोरी करते थे कृष्ण है? आप लोगों ने क्या सुना है, संतों से क्या सुना है आप लोगों ने? कृष्ण मक्खन की चोरी करते थे क्या? दूसरों के घर की ही मक्खन चोरी करते थे कि अपने घर की भी मक्खन चोरी करते थे, बोलो है? तभी तो वो चोराग्रगण्य हो गए, वो चोरों का सरदार हो पाए। खाली दूसरों के घर की चोरी करते तो खाली चोर कहलाते, चोरों के सरदार न कहलाते। देख लो, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसी प्रकार से भगवान शिव को कहा कि तस्कराणाम पतये नमः। चोरों के सरदार, तस्करों के पति, सरदार, मालिक, नियंत्रक। आप तस्करों के सरदार हैं, तस्करों के मालिक हैं, चोरों के सरदार हैं, और मेरे पास एक ऐसा चोर है उसने हैरान कर रखा है। वो कौन है? जैसे कोई बाप, जैसे कोई बाप एक बेटा पैदा किया और उसका बेटा वो चोर हो गया और चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया। बाप का हृदय है बेटा तो मेरा है, और सूचना गई बाप के पास पहुंची कि तुम्हारा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया और जेल में बंद है, उसको छुड़ा लो, जमानत देकर छुड़ाओ। बाप गया, जमानत दिया और छुड़ा के ले आए। दो चार बार समझाया, ऐसी बदमाशी नहीं करना, इस बार तो मैं छुड़ाया छुड़ाया, अब बदमाशी नहीं करना। लेकिन वो आदत से मजबूर था बेटा, थोड़ी देर के बाद फिर चोरी करने चला गया, पकड़ा गया, फिर जेल में बंद हो गया। फिर सूचना मिली बाप को कि बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया। बड़ा दुखी हुआ बेटा, बाप बड़ा दुखी हुआ। फिर कुछ दिन के बाद गया और जमानत पर उसका अपने बेटे को छुड़ा के ला, फिर कहने लगा कि अब बदमाशी मत करियो। लेकिन वो बेटा आदर का मजबूर, कुछ दिन के बाद फिर चोरी करने, फिर पकड़ा गया। बार बार पकड़ा, चोरी करता है, बार बार पकड़ा जाता है, बार बार छुटाता है, लेकिन वो अपने चोरी करने के आदत नहीं छोड़ रहा है। और पकड़ने वाले भी पकड़ रहे हैं, जमानत पर छोड़ रहे हैं। मानो शंकराचार्य जी इसी तरह की बात यहां कह रहे हैं शिव जी से। एक बेटा के रूप में मेरे पास एक मन है, वो चोर है। हा, प्रणोबाद्येर अर्थाहरण परतंत्रो धनिग्रीय। देख लो, मेरा मन अर्थमुखी हो गया। अर्थमुखी होने के कारण वो अर्थाहरणम, धन संपत्ति को पाने के लिए वो बड़े बड़े धनी गृहों में जाता है और धनिकों की चाटुकारी करने लगता है। समझ गए? धनिकों की चाटुकारी करता है। किसके लिए? धन के लिए। धनिकों के घर घर में जाता है, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, और वो लोग नहीं देते हैं तो ये मन ऐसा बदमाशी है कि मांग कर नहीं दे रहे तो चोरी कर लेता हूं, फिर चोरी भी करने लग जाता है। चोरी करने में भी ये मन प्रवृत्त हो जाता है। मैं उसको कई बार समझाता हूं, बदमाशी न कर, चोरी मत कर, लेकिन मेरा कहना मानता नहीं है, फिर ही चोरी करने चला जाता है। ये साधारण पुलिस वाले उसको पकड़कर उसको ठीक कर नहीं पाएंगे, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है। उसको चोरी करने से रोक पाने में साधारण समर्थ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वे जो पकड़ने वाले हैं वो खुद ही चोर है। समझ गए कि नहीं? तुम मुझे पकड़ोगे तो तुम खुद चोर हो, तो फिर मुझे क्या तुम ठीक कर पाओगे? सभी के पास मन है और सभी का मन चोरी में अग्रगण्य है, प्रवृत्त हो जाता है स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो निषिद्ध कर्म भी करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो साधारण जीव इस मन को क्या ठीक करेंगे? वो जिसके पास चोरी का ही मन विद्यमान हो वो चोर को क्या ठीक करेंगे? जिसकी चोरी करने की आदत है वो तो कहेगा कि तू भी चोर ले, कमीशन हमको दे देना। आजकल तो सारा समाज ही इसी तरह चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? पकड़ा भी जाएगा तो ठीक सावधानी से पकड़ना, चोरी करना, लेकिन हमको भी दे देना कमीशन, तो क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे भाई? तो शंकराचार्य जी 22वें श्लोक के द्वारा भगवान शिव से अपने मन की अवस्था की बात करते हैं। मैंने कितने बार इसको समझाया लेकिन ये चोरी करना छोड़ता नहीं, बार बार जाता है। प्रलोभाद्यर्था हरण परतंत्रो धनि गृहे प्रवेशो युक्त सन भ्रमति बहुधा तस्कर पते। मेरा मन तस्कर है और तुम तस्कर पति हो, स्वामी हो, और तुम्हारे पास तस्कर मन नहीं है, है? चोरी करने का मन नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास चोरी करने का मन है। है? बोलो, आप लोगों के पास चोरी करने का मन होता है कि नहीं? है? नहीं होता है ना? अरे हमको पता है, मौका लगे कोई नहीं छोड़ने वाला है, कोई नहीं छोड़ता मौका। इमं चेतश्चोरम, ये देखो मेरा यह चित्त रूपी चोर है। कथमिह सहे शंकर विभो, बेटा यदि बहुत चोर हो जाए बाप सहन नहीं कर सकता, बेटे की बदमाशी को बाप ही सहन नहीं कर सकता है, तो अहम कथम सहे, मेरे बेटे मन रूपी बेटे की चोरी करने की आदत को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उसको ठीक भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी चोर हूं, तो मैं कैसे। हर चोर ये कहता है बाप चोर हो, और चोर के जेब में से उसका बेटा रोज पैसा चोरी करने लग जाए तो बाप बेटे को थप्पड़ मारेगा। कौन बाप? चोर बाप। मारेगा कि नहीं? तूने फिर मेरे जेब से पैसा चोरी की, तू थप्पड़ मारेगा। और बेटा यदि कहता है पिताजी तुमने भी चोरी की है तो चोरी करके लाए हो पैसा, मैं चोरी कर रहा हूं, तो बाप ये कहता कि चोरी में सीना जोरी, मैं चोरी कर रहा हूं ये तो मैं कर रहा हूं, तू क्यों करेगा। चोर भी ये नहीं चाहता कि कोई और चोरी करे, बदमाश भी ये नहीं चाहता कि और कोई बदमाश करे, लेकिन खुद बदमाश करने वाला और बदमाश को ठीक नहीं कर पाता है, ठीक नहीं कर पाएगा, नहीं चाहे तो ठीक है लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं खुद चोर हूं तो इसलिए मैं चोर रूपी चित्त को मैं कैसे ठीक करूं। तो आप तस्कराणम पति हैं, सारे चोरों को दंड देने की क्षमता रखते हैं। कल तक तो इधर एक बोर्ड लटका हुआ देखा था, है कथा है किधर है? अच्छा अच्छा, कल तक तो एक बोर्ड लगाया हुआ था, किस चीज का? मोबाइल का पिक्चर था, उसमें क्रॉस किया हुआ था, मोबाइल में क्रॉस। अच्छा अच्छा, हम सनातनी है, ठीक है। ओहो अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा काम है, सनातनियों के भी अनुकरण करना चाहिए भाई। मैंने कुछ दिन पहले देखा था यहां कहीं लटका हुआ है ना था, हाँ मोबाइल का पिक्चर बनाया था और उसमें क्रॉस किया हुआ था। चलो ठीक है, अब तो समझ गए ना आप। तवाधीनम कृत्वा मही निरपराधे कुरु विभो पर कृपाम, इस मन रूपी चोर को मैं आपके अधीन करता हूं और मुझे इसके अपराध से मुक्त कर दीजिए, मैं अपने जिम्मेवारी से अलग हो जाता हूं, इसको आपके हवाले कर देता हूं और मैं अपने जिम्मेवारी से अलग हो जाता हूं। लेकिन बाप के रहते बेटा चोरी करे तो बाप की जिम्मेवारी होती है ना, अब वो जो चोर है बेटा वो किसी के हवाले कर दो तो अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए कि नहीं, या तो ठीक करो या किसी को दे दो। तुम्हारे पास बेटे हैं कि नहीं है? क्या तुम्हारे बेटे बदमाश नहीं चोर नहीं होंगे इसीलिए तुम अपने पास रखे हो? दायित्व तो यही है, तुम्हारा बेटा यदि बदमाश है तो या तो उसको ठीक करो, नहीं कर सकते हो तो किसी को दे दो, ले जा। तो हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आए, पति पत्नी कपल आए तो बच्चे को लेकर आए, महाराज ये बहुत बदमाश हो गया है, पढ़ता ही नहीं, इसको आप अपने पास रखिए, लेके आए। हमने कहा कि ठीक है छोड़ जाओ, हम इसको ठीक भी करेंगे और उसके बाद इसको चेला भी बनाएंगे और सन्यासी बना देंगे, छोड़ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा है, इसको ठीक कर दो, सन्यासी मत बनाओ, ये सच्ची घटना है, ठीक तो कर दो लेकिन सन्यासी मत बनाना है। अब रत्नाकर को यदि साधु महात्मा लोग ऋषि लोग यदि सन्यासी न बनाते तो वाल्मीकि कहां से बनता और रामायण कहां से बनती है? तुम लोग अपने बेटे को सन्यासी बनाने के लिए राजी नहीं हो तो प्रेमपुरी आश्रम में वक्ता कहां से आएंगे है? कहां से आएंगे वक्ता? तो लोग ऐसे एक बदमाश करते हैं और क्या, ठीक कर दो लेकिन सन्यासी मत बनाओ, अपने आप ठीक नहीं कर सकते। फिर भी हम कोशिश करते हैं, गुरुकुल खोल रखा है उसको सज्जन बनाने की कोशिश करते हैं, और पढ़ा लिखा विद्वान होता है फिर चला जाता है, तो जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं है। इसी प्रसंग में अब 23वां श्लोक अब निरंतरता देते हैं, हम 5 श्लोक को हम गाएंगे। ये शिखरणी छंद पर आधारित हैं कुछ श्लोक हैं। करोमि तत्पूजाम सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्तम विष्णुत्तम दिशति खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वं द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षि मृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदम् कथमिह सहे शंकर विभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सहगणेर वसन शंभोरग्रे स्फुटघटित मूर्धांजलिपुटः विभो सांब स्वामिन् परशिव परमशिव पाहीति निगदन् विधात्रीणां कल्पान् क्षणमिव निवेश्यामि सुखतः स्तवेर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केलीवीर मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवम् त्रिनयनमुमाश्लिष्ट्य वपुषम् कदा त्वं पश्येयम् करधृतमृगम् खड्गपरुषम् कदा वा त्वं दृष्ट्वा गिरिशतव भव्याङ्ग्रियुगलम् गृहीत्वा हस्ताभ्यम् शिरसि नयने वक्षसि वहन् समाश्लिष्याग्राय स्फुटजलजगन्धान् परिमलान् अलभ्याम् ब्रह्माद्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये करस्ते माद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भूजाम् अमरसुरभि चिन्तामणिगृहे शिरस्ते सीतांसौ चरणयुगलस्थे अखिलशुभे कमरथं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः करोमि त्वत्पूजाम्। शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान शिव से संबोधन कर रहे हैं, विभो हे विभो, जो सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है उसको विभू कहते हैं। संबोधन है विभो, विभु माने व्यापक, सब जगह हो, सब जगह हो, जहां वस्तु है वहां पर भी है, जहां वस्तु नहीं है वहां पर भी है, वस्तु के भाव और अभाव का अधिष्ठान बनकर जो बैठा है, भाव और अभाव का प्रकाशक होकर रहता है। यदि अभाव का प्रकाशक न हो तो यह अभाव, वस्तु के अभाव कैसे सिद्ध होगा? वस्तु के भाव को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वही वस्तु के अभाव को भी प्रकाशित करता है, इसीलिए वस्तु है संबंधी ज्ञान और वस्तु नहीं है संबंधी ज्ञान, ये दोनों वस्तु के भाव और अभाव को प्रकाशित करता है, ये वेदांत का रहस्य है। और भगवान शिव विभु हैं। विभु का मतलब सब जगह है, इसलिए परमात्मा का सर्वत्र अन्वय है, अनुगत है। सूत्रे मणिगणा इव, हर मन के में सूत्र का अन्वय है। माला में विद्यमान जितने भी मनके हैं, ऐसा कोई मन का नहीं है जो सूत्र से अनुविद्ध न हो। इसी तरह जगत में जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, कार्य और कारणात्मक, भोग्य और भोक्तात्मक, ये सारे पदार्थ में परमात्मा व्याप्त है, इसीलिए उसको विभू कहा। विभू शब्द का दो अर्थ है, एक तो व्यापक अर्थ में विभू शब्द प्रयोग होता है, दूसरा विशेषण भवती इति विभू, जरूरत पड़ता है तो वह वही विशेष उपाधि को धारण करके वही प्रकट हो जाता है, कहीं अन्यत्र से आना नहीं पड़ता उसको, कहीं अन्यत्र से आने की जरूरत नहीं है। विभू माने सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है, वो अव्यक्त रूप में रहता है सर्वत्र, और जहां तमाम पदार्थ उपलब्ध हैं उसको विशेष रूप से यदि प्रकट होना होता है तो उसी विद्यमान पदार्थ को उपाधि बनाकर प्रकट हो जाता है, इसीलिए विशेषण भवति इति विभू, उसको जहां भी प्रकट हो जाएगा, जिस उपाधि से भी प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को व्यक्त होने में एक ही निश्चित उपाधि चाहिए ऐसा नहीं है, किसी भी उपाधि में पैदा हो जाए प्रकट हो जाएगा, मनुष्य उपाधि में भी प्रकट हो जाएगा, पशु उपाधि में भी प्रकट हो जाएगा, पक्षी उपाधि में भी प्रकट हो जाएगा। विशेष प्रकट के लिए संसार में जितनी उपाधियां परिकल्पित हैं, हर उपाधि परमात्मा ने अपने विशेष अभिव्यक्ति के लिए बनाया हुआ है, और इन्हीं उपाधियों के द्वारा वो प्रकट होता रहता है। तो इसलिए विभू, ये संबोधन द्व्यर्थक है, सगुण साकार के लिए भी विभू है और निर्गुण निराकार के लिए भी विभू है। सगुण निराकार के लिए भी विभू है। करोमि तत्पूजाम, हे विभो अहम तत्पूजाम करोमि, मैं आपकी सेवा करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, आपकी अर्चना करता हूं, वंदना करता हूं। सपदि सुखदो में भवा, इसका प्रतिफल है कि मुझे तुरंत मोक्ष देने वाले बने। यह सुखद का अर्थ होता है सुखम ददाति इति सुखद भवा, मुझे सुख देने वाले हो जामे, मुझे विषय देने वाले हो, ये तो साधारण व्यक्ति कहता है, मुझे पदार्थ देने वाले हो जाओ, मुझे विषय देने वाले हो जाओ, ये तो साधारण व्यक्ति कहेगा। असाधारण व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे सुख दो। सुख पदार्थ से भी प्राप्ति होती है और बिना पदार्थ का भी प्राप्त होता है। संसारियों को पदार्थ से सुख प्राप्ति होता है, भूख लगी है और उसको बढ़िया भोजन मिल जाए तो उसको उसी में सुख की अनुभूति होगा, उसके अलावा वो सुख अनुभूति नहीं कर सकता है। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति वह बिना भोजन के भी सुख का अनुभव करता है, वह दुख का अनुभव कब करता है, जब प्राण से संबंधित होता है तभी जाकर दुख का अनुभव करता है, जब प्राण उपाधि से वह असंग हो जाता है तो उसका दुख का कोई वो नहीं है। वह जैसे सुषुप्ति अवस्था में किसी भी उपाधि से आप संबंधित नहीं होते फिर भी वहां आनंद का अनुभव होता है, ज्ञानी इसी तरह विषय निरपेक्ष सुख का अनुभव करता है। और विषय निरपेक्ष सुख का अनुभव जैसे आप सुषुप्ति में करते हो वैसे ज्ञानी जागृत में ही कर लेता है, इसलिए ज्ञानी को जीवन मुक्ति की अवस्था, उस अवस्था को जीवन मुक्ति की अवस्था की संज्ञा दी गई है। तो सुखदो भवः, आप मुझे सुख देने वाले बने। करोमि तत्पूजा, मेरे पूजा का फल। देखो संसार बड़े विचित्र है, व्यक्ति भगवान की सेवा और पूजा से भी क्षुद्र और लौकिक फल की कामना करता है, इसलिए वो दुखी बना रहता है। इस श्लोक से ये भाव सिद्ध होता है कि भगवान के पूजा अर्चना आराधना प्रार्थना से क्षुद्र फलों की याचना भक्त को नहीं करनी चाहिए। हाँ, सुखद का अर्थ होता है केवल सुखद, न तो वस्तु है। और क्योंकि परमात्मा के पास सुख पर्याप्त है, वस्तु पर्याप्त नहीं है। सुख देने में उसको आसान है, कोई मांगे तब न, मांगते नहीं है। सुख देने में तो उसके पास आसान है, वस्तु है ही नहीं, इसीलिए वस्तु फिर खोजनी पड़ती है उसको देने। तुम यदि कोई वस्तु मांग लोगे तो उसके लिए तो उसको व्यवस्था मिलानी पड़ती है, तिकड़मबाजी करनी पड़ती है। समझ गए कि नहीं? मान लो तुम उदाहरण दो कि तुमको बेटा नहीं है, अब तुमको बेटा चाहिए, है ना? तुम भगवान से प्रार्थना करो, पूजा करो और कहो कि मुझे बेटा दो, पुत्र दो, तो उसे पुत्र देने के लिए तिकड़म करना पड़ता है। वो सीधा पुत्र नहीं दे पाया, तूने मांगा और दे दिया। इतना आसान नहीं है, वस्तु देने में इतना आसान नहीं है, बड़े तिकड़म करना पड़ेगा। फिर किसी लड़की से तुम्हारा संबंध जुड़वाएगा, और यदि जुड़ चुका और पुत्र नहीं हुआ है तो फिर वो और तिकड़म करेगा। फिर डॉक्टर से संबंध मिलाएगा, फिर दवाई लो, उतनी से भी नहीं हुआ रहा, फिर तिकड़म करो तो बोले किसी महात्मा से संबंध जुड़ा देगा, मंत्र ले लो। ले जी, हे भगवान कितनी कष्ट है, मांग तो रहे हो तुम उससे, उसको देना बहुत आसान नहीं है, तिकड़मबाजी भिड़ाता जा रहा है, भिड़ाता जा रहा है। अब किस दिन उसका सफलता मिलेगा तो तुम्हें ले मांगा था ना, कर देगा वो तो। लेकिन सुख यदि मांगोगे, शांति यदि मांगोगे, वो तो उसके पास ऑलरेडी विद्यमान है। तुम कहो कि महाराज भगवान मुझे शांति दो, तो तुरंत दे देगा। सुखदाह भक्तों को उसके अलावा दूसरी चीज नहीं मांगनी चाहिए, उत्तम भक्त का लक्षण यह है। बाकी और चीज मांगते हैं तो वो मध्यम या कनिष्ठ भक्त है। उत्तम भक्त वस्तु नहीं मांगता है, सुखदा। करोमि त्वत्पूजां, शंकराचार्य जी एक साधारण भक्त के हृदय में रहकर ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो। भगवान शिव, कदाचित भगवान शिव शंकराचार्य जी डर रहे हैं साथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर यदि भगवान शिव मुझे साधारण जीव की तो बातें छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु आदि पद यदि दे देंगे तो बोले महाराज ऐसी गलती मत करना, मुझे वो पद नहीं चाहिए। हैं? क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? बोले अरे हमने सुना है पुराण में, पढ़ा है पुराण में, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं, ब्रह्मा और विष्णु बनने के बाद भी अहंकार का, अभिमान का, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व का घमंड हो गया। पुराणों में सुना है कि नहीं आप लोगों ने? है? सुना है, पढ़ा है। पुष्पदंताचार्य शिवमहिमने स्तोत्र में इस बात को भी लिखते हैं, शिव पुराण में एक कथा है और उसी के आधार पर शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं। मुझे विष्णु का पद देना चाहो तो भी नहीं चाहिए महाराज, ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद देना चाहो तो भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? ब्रह्मा विष्णु इंद्र बनना क्यों नहीं चाहता है? अरे जो बने हैं उनकी हालत तो देखो, और तुम मुझे बनने के लिए प्रलोभन कर रहे हो, उनके जो उनके हालत देखो है? क्या हुआ उनको? विधि त्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्य फलमिति। आपके दिया हुआ जो विष्णुत्व पद, विरिंची पद, इंद्र पद, उसका फल तो यही तो है। क्या फल है? पुनश्च त्वं द्रष्टुम्, उन लोगों को आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। एक तो इधर आपस में ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व का घमंड हुआ, मैं ज्येष्ठ मैं श्रेष्ठ, ब्रह्मा कहने लगे मैं बूढ़ा हूं, हा? मेरे नाभि कमल से बच्चा जो है ना मां के पेट में से एक नाले एक नसा से जुड़ा हुआ होता है। विष्णु कहते हैं तू मेरा बेटा है, ब्रह्मा कहते हैं तू मेरा बेटा है, अभिवादनशीलस्य वृद्ध नित्यम वृद्धोपसेविनो, जिसके स्वभाव में नित्य निरंतर विनम्रता हो और नित्य निरंतर वृद्धों की सेवा करने का स्वभाव हो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम्, चत्वारिम तस्य वर्धन्ते आयुर्वित्तम यशोबलम्, उस व्यक्ति का चार चीज अपने आप ही बढ़ने लग जाता है, अपने आप बढ़ने लगता है। और अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र व्यतिक्रम चत्वारिम तस्य नश्यन्ते आयुर्वित्तम यशोबलम्, जिसकी सेवा करनी है उसकी सेवा करते नहीं और जिसकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है उसकी सेवा में लग जाते हैं। आजकल तो यही तो करते हैं ना, घर में बूढ़े मां बाप हैं उनकी सेवा करनी चाहिए तो उनकी तो सेवा करते नहीं है और पत्नी की सेवा करने में जिसकी जरूरत ही नहीं है उसकी सेवा करने में लग जाते हैं, तो उनका क्या अभिवृद्धि होगी, क्या श्री बढ़ेगा, बोलो क्या श्रेय बढ़ेगा उनका, हाँ। आजकल कर ही रहे, पत्नी का कहना मान जाते हैं, मां बाप का कहना मानते नहीं, इसीलिए वो लोग दुखी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु को, अरे तू मेरा अभिवादन नहीं कर रहा, मैं बूढ़ा हूं तू जवान है और जवान को चाहिए कि वृद्धों की सेवा करे, है? ब्रह्मा जी की दाढ़ी सफेद है कि काले हैं? आप लोगों ने क्या देखा है ब्रह्मा जी की दाढ़ी को, सफेद देखा है कि काले? सफेद है। उनके पास ये आजकल वो गया नहीं लगता है, वो होता है ना केमिकल्स काला रंग, वो शायद ब्रह्मलोक में होगा, वहां कोई धीरूभाई वगैरह पहुंचे नहीं होंगे ना, अंबानी ग्रुप रिलायंस ग्रुप ये लोग वहां ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मा की दाढ़ी देखकर उसी के लिए फैक्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि जहां जो देखते हैं कि हाँ यहां इसकी आवश्यकता है तुरंत मार्केटिंग करने लग जाएंगे। तो जाने दो भाई, ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु कहने लगे, अरे मूर्ख तू मेरा बेटा है और मैं मेरा अभिवादन करता नहीं और खड़ा है, कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, सबसे बड़ा कौन है? इस प्रकार का जब विवाद शुरू हो गया तो वही भगवान शिव अपने एक सगुण निराकार रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, ये पुराण शिव पुराण की कथा है। अब उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए, शिव दर्शन करने के लिए विष्णु सुअर का रूप, सुअर होता है सड़कों में गांव में भूंड गुजराती में बोलते हैं, है? उसका रूप धारण, बराह रूप और क्या है, वही तो है। बराह कह देंगे तो जरा अच्छा लगेगा, सुअर कहेंगे बुरा लगेगा, जाति एक ही है, है? तो पृथ्वी को खोजने का काम बराह का भी है सुअर का भी है, सू सू करोती थी सू करा, और पृथ्वी गंधवती है और इसीलिए सुअर के नाक बड़ी है क्योंकि नाक गंध ग्रहण करने में समर्थ है, इसलिए सू सू करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए पाताल में चले गए थे बराह भगवान, है ना? तो पाताल में कहां से शुरू हुआ भगवान शिव का वो, तो उसका पता लगाने के लिए मृग है ना, पशु का रूप धारण करके नीचे चले गए, और ब्रह्मा जी लास्ट में कहां पहुंचा है इसका पता लगाने के लिए पक्षित्व पक्षी का रूप धारण करके वहां ऊपर की ओर चले गए। हरिंजीर हरी राधा बिरिंचो हरी राधा तदुपरि बिरिंचो हरी राधा, महिमने स्त्रोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने संकेत किया, तदुपरि बिरिंची हरि ही अधा, पुनश्च त्वं द्रष्टुं दिवि भूवि वहन पक्षी मृगताम अदृष्ट्वा, फिर भी आपके दर्शन कर न पाने का परिणाम ये हुआ कि दोनों आकर खिन्न होकर बैठे भगवान के शिव के दर्शन करने के लिए पशु भी बने, पक्षी भी बने, विष्णु भी बने, ब्रह्मा भी बने, फिर भी आपके दर्शन कर न पाने के कारण खिन्न होकर बैठे। तब उसी ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट होकर सगुण साकार के रूप में विष्णु और ब्रह्मा जी को कहा कि तुम लोग घमंड में पड़े हो, यहां कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, तो तुम अपना घमंड छोड़ो, अभिमान छोड़ो, और तुम्हें किस कर्तव्य कर्म के लिए तुमको ब्रह्मा बनाया है, तुम्हें किस कर्तव्य कर्म के लिए विष्णु बनाया है, अपने कर्तव्य कर्म का स्मरण करके कर्तव्य कर्म नित्य करते रहो। महाराज, आपने जो कर्म हमारे लिए विधान किया है उसमें बड़ा वैषम्यता है ना, बड़ा वैषम्यता है। क्या वैषम्यता है? ब्रह्मा को कहा, क्या वैषम्यता है? ब्रह्मा ने कहा, महाराज यही है, सृष्टि करना है, जीवों की सृष्टि करनी है, किसी को ब्राह्मण बनाना पड़ता है, किसी को क्षत्रिय बना देना पड़ता है, किसी को वैश्य बनाना पड़ता है, किसी को शूद्र बनाना पड़ता है, किसी को गाय बनाना पड़ता है, किसी को भैंस बनाना पड़ता है, किसी को कुत्ता बनाना पड़ता है, किसी को सुअर बनाना पड़ता है, किसी को कृमि मकौड़े बनाना पड़ता है, किसी को राजा बनाना पड़ता है। महाराज, यही वैषम्यता है सृष्टि में, और मेरे सृष्टि में इस तरह की वैषम्यता, मैं ये करना नहीं चाहता हूं लेकिन करना पड़ता है, तो ये विषम सृष्टि करने का दोष मुझे लगता है, लगेगा, इस डर के मारे मुझे सृष्टि करना अच्छा नहीं लगता है। भगवान शिव ने कहा कि बेटा, ये जो सृष्टि में विषमता है वो तुम्हारी रचना से विषमता नहीं हुई है, ये तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सृष्टि कर रहा हूं और मैं विषम रचना कर रहा हूं करके तो कर्तृत्व बुद्धि तुम्हारे में है, इसलिए तुम्हारे सामने ये समस्या आई है। ये विषमता, ये तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी रचना से ये विषमता हुई है, ऐसा नहीं है। फिर कैसे मारा? बोले हर जीव के अपने अपने प्रारब्ध से ये विषमता तैयार हुई है। अपने अपने प्रारब्ध भोगने के लिए तद अनुकूलत उसको शरीर आदि बनाकर तुम दे रहे हो, उनका प्रारब्ध नहीं होगा तो तुमसे शरीर मांगने ही नहीं आएंगे। उनका प्रारब्ध नहीं होगा, यदि ब्रह्म विचार करते हुए उनका सारा का सारा क्रियमाण और संचित कर्म को नष्ट कर देंगे। शंकराचार्य जी जो बात कह रहे हैं, प्राकर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम प्रारब्धस्तु यह भुज्यताम। और प्रारब्ध कर्म भोग करके जो जीवात्मा निकल जाता है वह दोबारे तुम्हारे पास शरीर मांगने नहीं आएगा। आएगा है? आएगा वो जीव? कौन जीव आएगा ब्रह्मा के पास शरीर मांगने के लिए? कौन जीव जाएगा? जिसने ज्ञान के बल से संचित कर्म को नाश नहीं किया और असंगता अकर्ता भाव से क्रियमाण कर्म को छोड़ा नहीं, संचित कर्म भी यथावत है, क्रियमाण कर्म भी किया जा रहा है, और प्रारब्ध भोगते समय में प्रारब्ध भोग दृष्टि न रखकर भोक्ता भाव और कर्ता भाव अभिनिवेश करते आए, वो व्यक्ति मरने के बाद फिर तुम्हारे पास उन्हीं कर्मों के चलते फिर शरीर मांगने के लिए आएगा, तुम्हें उसके अनुकूल कर्म के अनुकूल शरीर बनाकर देना पड़ता है। तुमको ये भ्रांति हुई है कि मैं शरीर बनाकर दे रहा हूं, तुम क्या दोगे बेटा? भगवान शिव ने वहीं ब्रह्मा जी को तत्व का उपदेश करना आरंभ कर दिया, तुम अकर्ता भाव से कर्म करो तो वैषम्यता सृष्टि का दोष तुमको नहीं लगेगा। अब इधर विष्णु के बारे में वो भी कहने लगे, महाराज मुझे पालन करने का जिम्मा आपने दिया, पालन करने में भी विषमता होती है, हमको विषम करना पड़ता है, क्या करें महाराज? बोले विषम क्या करते हो तुम? बोले देखो ना महाराज, हापुस आम का सीजन आ गया, बंबई में सब रोज रोज दो दो चार चार हापुस आम रस निकाल निकाल कर रस पूरी खा रहे हैं, बेचारे वो गांव में झोपड़ी में रहने वाला वो छिलका भी नहीं पा रहा है, वो खिलाने का काम मेरा है, मुझे आपने खिलाने की जिम्मेवारी दी, अब वो साहब मैंने बनाया, लेकिन कहीं पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता, कोई खा पाते हैं कोई खा नहीं पाते, और जिसको खाने को नहीं मिलता है वो मुझे गाली करता है, है? जिसके पास पहले से विद्यमान है उसको और देता है, जिसके पास है नहीं उसको फिर दोबारे देने की चेष्टा ही नहीं करता है। कहते हैं ना कि समुद्र में ही बारिश ज्यादा होती है ना? अब परमात्मा भी तो ये करता है ना, जहां पहले से समृद्धि है उन्हीं को और समृद्धि बढ़ाता जा रहा है, उनका बैंक बैलेंस और बढ़ता जा रहा है, और बेचारे जो गरीब है वो दिन भर मजदूरी करते हैं, वो थोड़ा बढ़ाएंगे तो उसकी बुद्धि ऐसे बिगाड़ देता है कि बैलेंस बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, रात को दारू पीर कर माइनस कर लेते हैं। अब बुद्धि देने वाला कौन है? वही तो है, व्यवस्था वो करता है, पालन करने की जिम्मा उसकी है, और फिर भी इस प्रकार की विषमता सृष्टि में दिख रहा है कि नहीं? जब वही पालन करता है तो सबके सामने हापुस पहुंच जाए, सबके सामने खीरपुड़ी पहुंच जाए, ये व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता है वो? तो अरे विष्णु, ये भी वही थ्योरी है, प्रारब्ध है। जिसका प्रारब्ध है बम्बई में आएगा, बम्बई का बेटा बन के पैदा होगा, और जिसका खूब भोगने का प्रारब्ध है और जिसका रोने का प्रारब्ध है, किसी गांव में किसी भिखारी का बेटा बनकर पैदा होगा तो उसको रोना ही नसीब है। और तुम उसको क्या करोगे भाई, तुम्हारे क्या हाथ में है? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, तुम कर्ता क्यों बन गए? तुम व्यवस्था कर्ता बन जाओ, कर्ता नहीं तो असंग हो तुम। सब अपने अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, प्रारब्ध का व्यवस्था करता हो तुम, है? इस प्रकार से असंगता होते हुए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करोगे तो पालन करने में जो विषमता दिखती है उसका दोष तुमको नहीं लगेगा, और सृष्टि करने में जो विषमता दिखता है वह तुमको वो दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा और विष्णु को इस तरह भगवान शिव ने समझाया, परंतु पहले तो शिव भगवान आपके दर्शन के लिए वो लोगों को क्या क्या पापड़ बेलना नहीं पड़ा, बोलो है? करोमि त्वत्पूजाम् सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्तम् विष्णुत्तम दिशति खलु तस्य फलमिति। यदि आप प्रसन्न होकर मुझे इंद्र बना देंगे तो इंद्र की अवस्था भी हमने उपनिषद में पढ़ ली है, केनो उपनिषद में आप लोगों ने पढ़ा है। इंद्रियों को, अध्यात्म के जो देवता हैं इंद्रियों को परस्पर घमंड हो गया, चक्षुर इंद्रियों को यह अभिमान हो गया कि इस शरीर में मैं हूं, इसलिए सब देख रहा हूं, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, यदि मैं न रहूं तो सब गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे, इस शरीर में मेरी सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए मैं तुम लोगों से ज्येष्ठ हूं, चक्षुर इंद्रिय ने कहा। और तुरंत फिर कान ने कहा, श्रोत्रेन्द्र ने कहा कि नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, है? मैं हूं तो सब सुन पाता हूं, और मेरे सुनने से सबका व्यवहार आराम से हो सकता है, है? फिर उसके बाद रसन इंद्रिय ने कहा कि अरे तुम दोनों बेकार के हो, तुम्हारे न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस शरीर में यदि मैं न हूं तो कोई खा ही नहीं पाएगा, और खा ही नहीं पाएगा तो जिएगा कैसे, जिएगा नहीं तो मर जाएगा, तुम्हारा क्या मत, मैं तो तुम मेरा है, है? अब पांव ने कहा कि अरे सबसे बड़ा मैं हूं, पूरे शरीर को तुम लोगों के सहित मैं लेकर ढोता घूमता फिरता हूं, मुझे सबसे बड़ा मानो। इंद्रियां परस्पर घमंड करने लग गए, अभिमान करने लग गए, और जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम लोगों में से कौन बड़ा है आप बता दो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं यदि कुछ कहूंगा तो कल ये लोग अपने पक्ष में निर्णय ना आने के कारण मुझे भी गाली देना शुरू करेंगे। करते ना राजनेता लोग, पहले चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव में लग जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो घपला किया कहते हैं, चुनाव आयोग के विरोध में ही नोटिस जारी कर देते हैं, है? चुनाव ठीक से नहीं करा ले जी, और जो जीत जाता है वो कंप्लेन करने जाता है चुनाव आयोग के। अरे भाई दोनों तो जीत नहीं सकते हैं ना, चार कैंडिडेट होंगे तो जीतेगा तो एक ना है। अब इसको हार जीत का खेल मानकर चार में से एक जीतेगा वो जीत गया, खत्म हो गया, स्वीकार कर लो। वो स्वीकार नहीं करेगा, अपने जीतेगा तो स्वीकार कर जाएगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी के पक्ष में बोल देना ठीक नहीं। बोले ऐसा करो, तुम लोग इस शरीर से कुछ दिन के लिए बारी बारी से निकल जाना, और जिसके न रहने पर शरीर नष्ट हो जाए वो बड़ा है, बस है। तब जाकर आंख चली गई एक साल के लिए, यहां तो ऐसा नहीं होता है, गई तो गई, कभी कभी आ जाती है, वो कुरिन कोठारी जी ला देते हैं। हां गई एक साल के लिए। उसने सोचा था कि अब मेरे न रहने पर ये लोग दुखी होंगे, अब मेरे जाते ही मेरे का खूब सम्मान करेंगे, मैं बड़ा हूं। लेकिन एक साल के बाद लौटकर आया तो किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे न रहने पर तुम लोग कैसे रहे? बोले जय रहे आराम से भाई, तुम्हारे न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख न होने से किसी के हाथ कान में चला जाता है खाने खाते समय, है मुख में ही जाएगा, आंख न हो तो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब सारे इंद्रियों का घमंड खत्म हो गया, तब प्राण ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। तब उनको विश्वास ही नहीं हुआ, केन उपनिषद का प्रसंग है, विश्वास ही नहीं हुआ, तू कहां से बड़ा हो गया भाई। बोले अच्छा तुम मेरे कहने नहीं मानते हो तो मैं भी एक साल के लिए चला जाऊं, है चले जा चले जा। सब लोगों ने कहा, जब वो जाने की तैयारी करने लगा तो शरीर में स्पंदन हो गया, घबराहट हो गई, मानो कि अब शरीर खड़ा भी नहीं रह सकता है, जैसे भूकंप आ जाने पर प्राणी घबरा जाते हैं, उसी तरह प्राण जब निकलने की तैयारी की तो इतने में शरीर में सारे इंद्रियां शिथिल हो गए, तो तुरंत प्रार्थना करने लगे कि हे प्राण देवता तुम ही ज्येष्ठ हो। इंद्र की अवस्था उपनिषद में ऐसी है कि जहां ये देवता आपस में झगड़ा करने लगे तो थोड़ी दूर में एक यक्ष प्रकट हुआ, वो यक्ष और कोई नहीं भगवान शिव ही है। यक्ष के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए, वो कौन है क्या है पता लगाओ, तो पता लगा के जाओ। तो अग्नि दौड़ते हुए गया पता लगाने के लिए, तो अग्नि पहुंच गया यक्ष के पास और यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं जातवेद हूं, मैं अग्नि हूं, जातवेद हूं, क्या काम है, क्या करते हो तुम? बोले मैं चाहूं तो सबको जलाकर राख बना सकता हूं, मेरे में ये पुरुषार्थता है और इस सभी देवताओं में मैं बड़ा हूं। लेकिन ये और देवता मेरे इस बड़ेपन को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। यक्ष ने एक तीन का दे दिया कि अच्छा सबको राख कर सकते हो, इसको भी राख कर दो। अग्नि ने जोर लगाकर उसको राख करने की कोशिश की, राख की तो बात छोड़ दो, गरम भी नहीं कर पाया। ये तो परमात्मा का संकल्प है, अग्नि क्या भया दस्याद अग्निष्टपति भयास्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावती पंचमा। उस परमात्मा के अनुशासन में अनुशासित होकर ही अग्नि तप रही है, और क्या मजाल है कि परमात्मा के सामने वह कुछ उद्दंडता कर सके। जब उस त्रिने को वह गर्म ही नहीं कर सका तो यक्ष ने कहा कि खामो खाम क्यों घमंड कर रहा था कि सब मैं जलाकर राख कर देता हूं, एक छोटे से त्रिण को तो गर्म भी नहीं कर सका, जा। बेचारा अग्नि सिर झुकाते हुए आ गया अभिमान चूर। फिर उसके बाद वायु पहुंचा यक्ष के पास, वायु ने कहा, यक्ष ने पूछा वायु से, कोसी तुम कौन हो? मातरिश्व अंतरिक्ष में विचरण करना मेरा काम है। अच्छा तुम्हारा नाम मातरिश्व है तो काम क्या है? बोले मैं चाहूं तो सारे पृथ्वी को धूल में परिणत करके उड़ा के अनंत परमाणु में बदल सकता हूं, इतनी ताकत है मुझ में। हाँ? कभी कभी दिखता है ना, है? बाबा जोड़ो आता है ना, कभी देखता कि हाँ लगता है ताकत है, है? बाबा जोड़ो गुजराती में बोलते हैं साइक्लोन, अच्छा तुम्हारे में इतनी ताकत है, बोले हाँ, तो उसके सामने भी वो तृण यक्ष ने रख दिया, बोलो इसको जरा से स्पंदित करो, उड़ाओ। लगाया जोर तो कहां उड़ाने की तो बात, थोड़ा स्पंद भी नहीं कर सका, बोले जा तू भी जा। तो ऐसे ही घमंड करते हो तुम लोग। लौट कर आया तो क्या है, बोले पता नहीं क्या है, विचित्र है वो। तो इंद्र ने कहा कि अब मैं जाता हूं, पता लगाता हूं, तुम लोग क्या पता लगाओगे। इंद्र गया तो इंद्र पहुंचने से पहले यक्ष गायब। इंद्र को भी दर्शन करने को नहीं मिला। भाई तुम इंद्र बना दोगे तो तुम्हारी पूजा से तुम प्रसन्न होके मुझे इंद्र बना दोगे, तो इंद्र बनकर फायदा क्या हुआ, आपके दर्शन तक नहीं हो पाया। तड़प रहा है वो, चटपटा रहा है। हाँ, आकाशवाणी हुई कि अरे मैं उमा, हाँ, ब्रह्म विद्या अहिमावतीम उमाम, केन उपनिषद का प्रसंग है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ही मैं हूं और तुम लोग खाली घमंड कर रहे हो। तुझे यक्ष के रूप में भी दर्शन न होने में कारण यह कि तू सबसे ज्यादा घमंडी है, अहंकारी है। उनको तो यक्ष के रूप में कम से कम दर्शन तो मिला, तुझे तो वो भी नहीं मिला। क्यों? तो उनसे भी ज्यादा घमंडी है तू, इसलिए अहंकार छोड़ो तब जाके दर्शन होगा। तो शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न इंद्रपद, न विष्णुपद, न ब्रह्मापद, न पुनः जीवपद, मुझे तो बस केवल सपद ही सुखद, तुरंत सुख। ये तो ज्ञान में ही संभव है, मोक्ष में ही संभव है, हाँ, और कोई उपाय से वो संभव नहीं है। करोमि तत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्वं विष्णुत्वं दिशति खलु तस्य फलमिति पुनश्च त्वं द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षि मृगतां अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो। दो बातें यहां द्वैर्थक है। एक तो मैं आपके दर्शन कर न पाने के कारण उस खेद को कैसे सहन करूंगा। दूसरी बात यह है, जैसे बच्चे सोए हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब सोए हुए होते हैं उस समय में मां कहीं अन्यत्र चले जाती है काम में, और जब उठता है बच्चा तो रोता है, मां को नहीं देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है कि मां कहां चली गई, मां का दर्शन नहीं हो पाता, मां को नहीं देख पाता है तो जोर जोर से रोने लगता है, व्याकुल होकर रोता है। तो इसी तरह मैं तो बालक हूं और आपका दर्शन मुझे दोबारे न मिले, इंद्र को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, विष्णु को नहीं मिला, वो तो थोड़े बड़े थे सहन कर गए होंगे, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा महाराज, आपका दर्शन न होना मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। एक तो ये, दूसरी बात बच्चे को मां जहां सुलाकर गई थी वहां यदि वापस आने के बाद उसी स्थान में बच्चा नहीं मिलता है तो बच्चे के वियोग को मां कैसे सहन कर पाएगी। और दूसरी बात, बच्चा यदि दुखी होता है तो उसके दुख को ही मां अपने दुख मानती है और बच्चे के दुख को मां सहन नहीं कर सकती है। तो तुम पिता स्थानीय हो, मैं बच्चा स्थानीय हूं, और मैं यदि आपके दर्शन न कर पाने से मैं दुखी हूं तो मेरे दुख को आप कैसे सहन कर पाओगे, ये तुम भी दुखी होना पड़ेगा। इसलिए ये सब छोड़ो, मुझे अपने सपदि सुखदः मोक्ष दो। कदा वा कैलासे कनकमणि सौधे सह गणेर वसन शंभोरग्रे पुटघटित मूर्धांजलि पुटः विभो सांब स्वामिन् परम शिव पाहीति निगदन् विधात्रीणां कल्पान् क्षणमिव निवेश्यामि सुखद। भक्त भगवान शिव की भक्ति में, जब भगवान के भक्ति में लग जाता है तन्मयता से, उसको समय कितना व्यतीत हो गया वो पता ही नहीं चलता है। और जब जीव संसार और सांसारिक पदार्थों में, विषयों में आसक्त होता है तो थोड़ा समय भी उसको ब्रह्मकल्प की तरह लगने लगता है। संसार प्रतिकूल होने लगता है तब उसको थोड़ा समय भी ब्रह्मकल्प की तरह होने लगता है। जब शिव भक्ति में उसका मन निष्ठा से लग जाता है तो ब्रह्मकल्प भी एक क्षण की तरह निकल जाता है। ये बात शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं। हाँ, कदा वा कैलासे हे शिव, मेरे जीवन में वो अवसर वो मौका कब आएगा। रावण भी अपने स्तोत्र में तांडव स्तोत्र में ये कहता है, मेरे जीवन में वो कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम्बन विमुक्त लोल लोचन ललाम भाल लग्न क शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। लेकिन कल्पना ही करता रह गया, सुखी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब कुछ छोड़कर शिवा ये मंत्र का उच्चारण उसने नहीं की। सारा विषय भोग वासना राग द्वेष छोड़कर दुष्टता, हालांकि वो खुद भी कह रहा है विमुक्त दुर्मति सदा, मेरे जीवन में ये दुर्गुण सर्वथा निकल के जावे, ये अवसर कब आएगा। मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा जब भगवती भागीरथी के नदी के किनारे एक गुफा में बैठा हूं और झाड़ियों के बीच में बैठा हूं और नित्य निरंतर अपने दोनों हाथ सिर में जोड़ता हुआ शिव 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 ये मंत्र सतत जप करता हुआ परम आनंद का अनुभव जो होगा, कदा सुखी भवाम्य हम, तब जाकर मैं सुखी होऊंगा, वो अवसर मेरे जीवन में कब आएगा। रावण कल्पना ही करता रह गया लेकिन अवसर आया नहीं। लगभग शंकराचार्य जी उसी रावण की जो भाषा है उसी शैली में बोल रहे हैं। देखो, रावण पहले हैं कि शंकराचार्य पहले हैं? बोलो ईमानदारी से। हाँ ठीक कह रहे हो, रावण पहले हो, शंकराचार्य जी से भी बहुत पहले है रावण। तो लगभग वही भाषा यहां प्रयोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी। कदा वा कैलासे, मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा कि मैं कनक मणि सौधे कैलासे, कैलाश पर्वत में मैं भी पहुंचूं, मेरा भी वहीं कैलाश पर्वत में निवास हो, कनक मणि सौधे और स्वर्णमय घर में आप जब विराजमान हो तो वहीं मैं भी विराजमान हूं, सहगणेर वसन अपने प्रमथ आदि गणों के साथ आप जब कैलाश में विराजमान हो तो वहां मैं भी हूं उन गणों के बीच में, शंभोरग्रे स्फुट घटित मूर्धांजलि पुट, अपने दोनों अंजलि को हाथ को जोड़ते शेर में हाथ लगाकर आपको प्रणाम करूं, और आप आगे मेरे सामने बैठे हुए हों और उस समय मैं बार बार आपके पवित्र नामों का उच्चारण करूं, आपको संबोधन करूं, विभो सांब सर्वव्यापक हे परमात्मा, अंबा के सहित माता पार्वती के सहित सांब, स्वामीन तीनों लोक के जो मालिक हैं स्वामीन, परम शिव सबका कल्याण करने वाले, परम शिव माने मोक्ष प्रदान करने वाले, परम कल्याण तो मोक्ष में ही होगा, उसके कम में परम कल्याण नहीं होगा। भूखे को भोजन देकर भोजन देने वाला उस भूखे का कल्याण करता है कि नहीं, लेकिन वह कल्याण परम कल्याण नहीं है। रोगी को औषधि देकर औषधि देने वाला डॉक्टर उस रोगी का कल्याण करता है कि नहीं, लेकिन वह परम कल्याण नहीं होगा, क्षणिक कल्याण होगा। लेकिन परम कल्याण तो क्या है, शरीर रहते हुए शरीर के रोग को निदान करके वो परम कल्याण होगा, शरीर ही न देना ये परम कल्याण है, शरीर को ठीक कर देना ये परम कल्याण नहीं है, शरीर ही न देना ये क्या है, परम कल्याण। जीव को बनाएकर खाने का भोगने का विषय देकर उसका कल्याण करना कल्याण नहीं है, जीव को फिर दोबारे जीव भाव की प्राप्ति न कर देना ये शिव की जीव प्रति परम कल्याण है। परम शिव पाहीति निगदन, मैं उस समय एक ही शब्द में बोलता रहूं कि हे शिवा हे परम शिवा हे सांबा हे स्वामीन हे विभो पाही, मेरी रक्षा करो मेरा कल्याण करो। ऐसा करते हुए कैलाश में विधात्रीणाम कल्पान, ब्रह्मा जी का जो कल्प है वह कल्प इतना लंबा समय, ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष है हमारा कितना समय लगेगा बोलो, कल्पना कर लो। उनके एक वर्ष तो हम कम से कम हजारों बार जन्म कर मरेंगे, हजारों का लाखों बार हैं, लाखों बार जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे जन्म, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होगा है? अब उनका सौ दिन एक कल्प हो गया, ब्रह्म कल्प, ब्रह्मा का सौ दिन और वैसे ब्रह्मा जी का एक कल्प, वाह इतना लंबा समय भी भगवान शिव के चरण में शिवा पाही इति करते हुए बैठते, एक सेकेंड क्षण की तरह वो बीत जाए हमको पता ही न चले, ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा। शिवा निवेश्यामि सुखता, वो भी सुखपूर्वक, वो समय जब तक प्रारब्ध है तब तक मैं कैसे रहूं है? तो ये अवसर मेरे जीवन में कब आएगा, आपकी कृपा से ही संभव है, अन्यथा और किसी प्रयत्न से वो संभव नहीं है। तो 5:30 से 7 बजे का टाइम है, बरसात का सीजन है, आप लोगों को जाने में टैक्सी मिले चाहे न मिले कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए तो यूं तो 5:30 से 7:30 का था तो ये विचार करके ही 5:30 से 7 बजे का रखा है, लेकिन आप लोग 5:30 बजे नहीं आए, मधुसूदन जी आए हैं, चिमन आए हैं, 2-4 भाई आए हैं, 2-4 बहन आई है, लेकिन सभी 5:30 तो नहीं आए है ना, आए अपने अपने मन से पूछो तो ईमानदारी से है। हाँ जो आए वो धन्यवाद के पात्र, जो ना आए वो और धन्यवाद के पात्र, क्योंकि आए तो सही कम से कम हाजिरी लगाए, और कल से ठीक 5:30 बजे आने की कोशिश करें, हम 5:30 बजे शुरू करेंगे और 7 बजे समाप्त करेंगे। शिवानंद लहरी भक्ति रस का भरा हुआ है और हम कोशिश यही करेंगे कि ये ऊपर से न जाए। तोम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।